बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जो है वो सेकंड हदीस हमने पढ़नी है, तो मैंने ग्रुप में भेज दी थी बहरहाल। और अगर मतलब आपको ग्रुप में से ना मिले तो यू कैन गो टू sunna.com और यहाँ गूगल पे लिख सकते हैं अरबाइन अल नबवी, तो आपको ये इंशाल्लाह किताब मिल जाएगी, या आपको ऑनलाइन कहीं से ये मिल जाएगा। sunna.com पे ये पड़ी हुई है। तो आज सेकंड हदीस है, और हदीस कुछ इस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और वो कहते हैं कि एक रोज़ हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक हमने देखा कि एक इंतहाई सफ़ेद लिबास और स्याह बालों वाला आदमी हमारी तरफ आ रहा है। तो यानी ना तो उस शख्स पर सफ़र के आसार दिखाई दे रहे थे, और ना हम में से कोई उसको पहचानता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिया, और अपनी हथेलियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों पर रख दिया, और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम करे, और तू ज़कात दे, और रमज़ान के रोज़े रखे, और बैतुल्लाह का हज करे, बशर्ते है कि वहाँ तक पहुँचने की इस्तेआत हो। फिर उस आदमी ने बोला, जो जिसने सवाल किया, उसने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया। हज़रत उमर कहते हैं कि हमें इस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही उसका जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तू अल्लाह पर, मलाइका पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, योम आखरत पर और तकदीर पर ईमान रखे, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरी तकदीर। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक फरमाया। फिर पूछा कि मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है तो अल्लाह की इबादत करे इस कैफियत में गोया कि तू उसको सामने देख रहा है। अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा, ठीक है, यानी ये कैफियत अगर पैदा नहीं हो सकती, तो कम से कम ये कैफियत पैदा कर ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे कियामत के वकू के बारे में बताइए। आपने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है वो उसके बारे में पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी कियामत का इल्म नहीं। फिर उस शख्स ने पूछा, तो फिर इसकी यानी कियामत की अलामत के बारे में कुछ बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी निशानियां ये हैं कि बांदी अपनी मालिका को जन्म देगी, और तू देखेगा कि नंगे पांव और नंगे बदन बकरियों के चरवाहों को, कि वो तामीरात में मुकाबलेबाजी करते होंगे। फिर हज़रत उमर कहते हैं कि वो शख्स चला गया, और हज़रत उमर जो हैं वो रुके रहे, यानी वो इस कैफियत में रहे कि वो हैरान थे ना उसको देख कर। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि ऐ उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि ये सवाल करने वाला कौन था? तो मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज़रत जिब्राइल थे, और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो यहाँ पर हदीस ख़त्म हो गई। अब ये जैसा आप समझ गए कि हदीस भी बहुत लंबी है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल सरसरी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने 10-15 मिनट में ख़त्म करना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे दीन के कम्प्लीटली एक होलिस्टिक व्यू हमें दे दिया गया कि दीन के अंदर तीन चीज़ें, इस्लाम है, ईमान है और एहसान है। इस्लाम के 5 अरकान बता दिए गए हैं, ईमान के 6 अरकान बता दिए गए हैं, और ईमान और एहसान के 2 कैफियात बता दी गई हैं। तो हम इस्लाम से शुरू करते हैं। इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 शहादतें, अल्लाह ताला के ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब जब शहादत हम बोलते हैं तो इसके 2 मानी होते हैं अरेबिक में, कि एक तो ज़ुबान से बोलना और दिल से तस्लीम करना, उसको दिल में भी मानना। क्योंकि अगर एक इंसान ज़ुबान से ये बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदर रसूलुल्लाह, लेकिन दिल से इसको तस्लीम नहीं करता, तो वो इंसान मुनाफिक हो जाता है कि उसने ज़ुबान से बोला, दिल से तस्लीम नहीं किया। और एक इंसान अगर सिर्फ दिल से तस्लीम करे और ज़ुबान से ना बोले तो वो काफिर है। क्यों? क्योंकि यहूद नसारा, हमें पता है कि वो हमारे नबी को, उस टाइम के यहूद नसारा जो थे, वो हमारे नबी को पहचानते थे, उन्हें ये पता था कि आप हक के साथ आए हैं, लेकिन उन्होंने जुबान से तस्लीम ना करने की वजह से ही वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, बेशक वो दिल में आप मानते हो, लेकिन आपको जुबान से भी तस्लीम करना है, और इस शहादत के दोनों हिस्सों को तस्लीम करना है। यानी अगर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को बोलेंगे और तस्लीम करेंगे, तब भी आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों पे बिलीव करना है। और फिर इसके इन दो चीज़ों के अलावा, कि दिल से और ज़ुबान से, दोनों से तस्लीम करने के बाद, तीसरी एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम हैं उनको मानना भी है। फिर उसके बाद आ जाती है नमाज। नमाज को यहाँ पे कायम करने का बोला गया, और नमाज के क्याम से जो नॉर्मली ज़ाहिर फिका में हम नहीं जा रहे कि वो तो हैं ही, नमाज के अरकान हैं जैसे, और नमाज की शरायत हैं जैसे वुजू है, अरकान में रुकू और सजूद हैं, वो तो हैं ही, लेकिन नमाज के क्याम से जो है दो चीज़ें मकसूद हैं। नंबर वन, कि नमाज को उसके टाइम पर, हर नमाज को उसके टाइम पर पढ़ना, और नंबर टू, उसको खुशू और खुजू के साथ पढ़ना। फिर उसके बाद आ जाती है ज़कात, और ज़कात तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ज़कात का इनकार करने वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल, या नमाज का इनकार करने वाला इंसान, कि जो सीधे से ही बोल दे कि नमाज और ज़कात है ही नहीं इस्लाम में, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। फिर उसके बाद रमज़ान के रोज़े हैं, और उसमें भी वो रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनका भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो रोज़े रखने हैं, लेकिन अगर आप सफ़र में हैं या बीमार हैं, तो आप उस दिन रोज़ा छोड़कर उसको बाद में रोज़ा रख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी है जिसमें आप रोज़े रख ही नहीं सकते, तो फिर आपको अपने हर एक रोज़े का कफारा अदा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हज की बारी है, कि अगर आपके अंदर इस्तेआत हो तो फिर आप हज करेंगे। ये इस्लाम के पांच अरकान जो हैं ये पूरे हुए। अब उसके बाद हम आते हैं ईमान के ऊपर। ईमान में सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान। उसके अंदर अब दो मेजर चीज़ें हैं, कि एक तो अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस पर ईमान, यानी कुछ ऐसे है ना आजकल मुल्हिद है कि मानते ही नहीं है कि कोई खुदा है, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस पर ईमान, और फिर उसके बाद तौहीद पर ईमान। तौहीद के अंदर फिर इकसाम आ जाती हैं, तौहीद रबूबिया है, यानी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राजिक, कारसाज वो अल्लाह है, ये तौहीद रबूबिया हो गई। फिर तौहीद उलूहिया, कि अल्लाह ताला के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, और उसके अलावा हम सिर्फ मदद भी अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। फिर तौहीद अस्माउ सिफात, कि अल्लाह ताला के नाम और जो सिफाती नाम जो कुरान मजीद में हैं उनके ऊपर वैसे ही बिलीव करना, जैसे कुरान मजीद के अंदर एक्सप्लेन किया गया, उनकी तमसील में या उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, हम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, अल्लाह रहमान रहीम है, हम इस चीज़ को मानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो ईमान के अंदर, वो है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर जब ईमान की बात आएगी, तो हम ये मानते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला के मखलूक हैं, वो नूर से पैदा किए गए हैं, और हर फरिश्ते की जो है अल्लाह ताला ने कुछ ड्यूटी लगाई है, जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, उनकी ड्यूटी वही के साथ है, मलकुल मौत हैं, तो उनकी एक ड्यूटी है रूह कब्ज़ करने की, तो हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है, और वो अपनी ड्यूटी से हटते नहीं हैं, वो अल्लाह ताला की कभी नाफरमानी नहीं करते। फिर इसके बाद तीसरा जो आ जाता है आपके ईमान के अंदर, वो है किताबों पर ईमान। तो जितनी किताबें जो कुरान मजीद में मेंशन्ड हैं और जो मेंशन्ड नहीं है, जितनी भी किताबें आ चुकी हैं, आसमान से आई हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके नाम जानते हैं और जिनके नाम नहीं जानते, हम सब पर ईमान लाते हैं। फिर अल्लाह के रसूलों पर ईमान, वही अगेन जिनके हम नाम जानते हैं और जिनके नहीं जानते, हम सब पर ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद आखिरत के दिन पर ईमान। अब आखिरत का दिन जो है वो समझने के एक इंसान की आखिरी स्टेज होती है, क्योंकि इंसान की जो है वो चार स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये कि जब अपने माँ के पेट में है, दूसरी स्टेज वो होती है जब वो इस दुनिया पे आ जाता है, और तीसरी स्टेज है उसकी जो जब वो मरेगा और आलम बरज़ख़ में चला जाएगा, और चौथी स्टेज जो है वो आखिरत है, जब उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। और इसके बारे में हमारा ईमान ये है कि जो जो हम कुछ हमें कुरान से और सही हदीस से पता है आखिरत के बारे में, हम हर चीज़ पर ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद अच्छी और बुरी कदर पे ईमान। अब कदर जो है वो उसको मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कदर की जो है एक्सप्लेनेशन वो बहुत ज़्यादा है, तो कदर पे हम ईमान लाते हैं अच्छी और बुरी, और इसमें जो एक बढ़िया जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये कि एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के पास कोई आदमी आया और उसने पूछा कि मुझे नसीहत करें। तो उन्होंने आगे से उससे सवाल पूछे, उन्होंने यानी नसीहत की उसको। उन्होंने बोला कि अगर तेरे रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है तो तेरा ये रिज़्क की तलाश में मारा मारा फिरना कैसा? अगर अल्लाह की तरफ से सखावत का बदला मिलना बरहक है तो तेरा ये बुखल कैसा है? अगर जन्नत बरहक है तो तेरा ये दुनिया का आराम कैसा है? और अगर जहन्नुम बरहक है तो तेरी ये मौसियत कैसी है, तेरी मुसीबतें कैसी हैं? अगर मुनकर नकीर के सवाल बरहक हैं तो दुनिया के साथ तेरी ये मोहब्बत कैसी है? और अगर दुनिया फानी है तो तेरा यहाँ इत्मीनान के साथ रहना कैसा है? और अगर हिसाब बरहक है तो ये दुनिया का मालो दौलत जमा करना कैसा है? और अगर ये सब कुछ कदा और कदर के मुताबिक है तो फिर तेरा ये खौफ कैसा है? तो कदा और कदर जो है उस पर ईमान में ये भी एक है कि आपके अंदर का खौफ खत्म हो जाता है। जो अल्लाह ताला ने लिखा है आपके लिए वो होना है, ठीक है? जाहिर है अल्लाह ताला ने आपके हाथ में कोशिश नीयत ये सब कुछ आपके हाथ में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एट द एंड जो भी रिजल्ट आएगा आपकी कोशिश का नीयत का वो अल्लाह ने लिखा हुआ ऑलरेडी। और एक और जो चीज़ जहन में रखनी चाहिए वो इस हदीस से भी ये चीज़ साबित होती है, जैसे हमने जब शहादतैन की बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से भी ये चीज़ साबित होती है कि आपके जो अमाल हैं, जैसे हमने पहले ये पढ़ा था पहली हदीस में, कि वो अमाल दो चीज़ों पर जज होंगे, आपकी नीयत पर और सुन्नत की, अल्लाह के नबी की सुन्नत की तकलीद पे। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो वह अमल रद्द हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं एहसान के ऊपर। इबादत के अंदर एहसान क्या है कि आप जब इबादत कर रहे हो आपके अंदर ये चीज़ आए कि जैसे अल्लाह ताला आपको देख रहा है, ये मुशाहदे का मकाम है, ठीक है? और इसको इमाम नबवी अपनी शरह में खुद ही लिखने के मुशाहदे का मकाम है, क्योंकि जो शख्स ये तय करता है कि मालिक कायनात का मुशाहदा करे तो इसको शर्म महसूस होती है कि वह नमाज में किसी और की तरफ इल्तफात करे या अपने दिल को किसी और के साथ मशगूल रखे। ये एहसान का आला तरीन दर्जा है, ठीक है? ये जो इबारत मैंने पढ़ी है ये इमाम नबवी की अपनी इबारत है। और अगर आप उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते तो फिर एटलीस्ट आपके अंदर ये चीज़ हो कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अगर आप इस दर्जे को नहीं पहुंच सकते कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हो अपनी इबादत में, जो कि एहसान का आला तरीन दर्जा है, तो उससे कम दर्जा है एहसान का जिसमें आपके अंदर ये चीज़ होती है कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं लेट्स वगैरह या कोई और इबादत का काम कर रहे हैं तो गफलत के साथ ना करें उसको। आपका होना तो ये चाहिए कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट आपके अंदर ये एहसास ज़रूर हो कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो आपकी इबादत के अंदर तब्दीली फील होगी आपको, ठीक? और फिर उसके बाद आपको पूछा गया, हज़रत जिब्राइल ने पूछा क़्यामत कब आएगी, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसका इलम सिर्फ अल्लाह ताला को है, यानी जिसने पूछा है और जिससे पूछा जा रहा है उन दोनों को इलम नहीं है। फिर उन्होंने क्यामत की निशानियों के बारे में पूछा, तो पहली निशानी ये बताई गई कि लोंडी का अपनी मालिका को जन्म देना। तो इसके काफ़ी सारी ताबीरात हैं, तीन ताबीरात मेरे सामने से गुजरी हैं जिनमें से मैं एक बयान कर रहा हूँ, और वो ये है कि जो औलाद होगी वो अपने वालदैन के साथ बुरा सलूक करेगी, उनको ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे ये मालिक हैं और जो वालदैन हैं वो उनके वो गुलाम है। तो ये इसके, लेकिन ये भी जहन में रखें कि इसके अलावा भी ताबीरात इसकी दो हैं। बहरहाल अगली जो निशानी बताई गई है वो ये कि जब बदू जो होंगे वो इमारतें तामीर करने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और आप देख लें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आज कहाँ पे है, दुबई में जहाँ बदू थे। आप दुबई की 100 साल पहले की पिक्चर जाके गूगल पे देख लें, आपको यकीन नहीं आएगा कि इस जगह पे आज इतनी बड़ी इमारतें बनी हुई है। सहरा था, 100 साल पहले सहरा था वो, तो उसको हमारे नबी ने 1400 साल पहले जो बात बोली थी वो आज सच हो रही है हमारे सामने। और फिर हमारे यानी इस पॉइंट के साथ ऑलमोस्ट ये जो मेजर पॉइंट्स इस हदीस के वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमने इस हदीस का मतलब समझने के 50% शायद कवर नहीं किया। इस हदीस को, इसको उम्मुल सुन्ना कहा जाता है, जैसे फातिहा को उम्मुल किताब का या उम्मुल कुरान कहा जाता है, ऐसे इसको उम्मुल सुन्ना कहा जाता है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो अब इसको एट द एंड हम दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इस हदीस से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली चीज़, इस ईमान और इस्लाम दो अलग कैफियतों का नाम है। इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ाहरी फरमा बरदारी, और ईमान जो है दिल के अंदर एक आपकी शहादत हुई, एक चीज़ है। और इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन है, ठीक है, और ईमान के 6 बुनियादी रुकन है या स्तून है। फिर उसके बाद एहसान जो है वो 2 कल्बी एहसासात का नाम है, जिसमें पहला जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला आपको, आप देख रहे हैं, ये है मुशाहदे का मुकाम। और दूसरा मुकाम है मुराकबे का, जिसमें आपको ये होता है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। और इसके अलावा हमने जो सीखा हुआ है कि क्यामत का इलम सिर्फ अल्लाह के पास है, और हमें जो निशानियाँ जो बता दी गई हैं वो उनमें से 2 निशानियाँ इस हदीस के अंदर मौजूद हैं क्यामत के आने की। और फाइनल चीज़ के इस्लाम, ईमान और एहसान, इनका मजमूई तौर पर नाम दीन है। तो इसके साथ ही मैं एंड करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।